नमस्कार आदाब साथियों, मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है गुरु मंत्र कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे विभिन्न शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया अलग अलग विषयों पर पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश। तो आइए सुनते हैं आज की टिप।
मैं उमा शाह, रामदेव सिंह यादव साइंस कॉलेज की व्याख्यातक पद पर कार्यरत। मैं आपको मोबाइल वाणी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मनोविज्ञान की जांच के तरीके और उनके जांच के लक्ष्य क्या हैं। तो प्रत्येक मनोविज्ञान के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं जो निम्नलिखित है, जैसे वर्णन, डिस्क्रिप्शन। जैसे किसी भी अध्ययन का कोई विषय होता है जिसका लक्ष्य होता है उस अध्ययन विषय का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए बच्चों की बुद्धि की जांच करनी है, तो अध्ययनकर्ता का पहले उद्देश्य यह होता है कि बुद्धि के स्वरूप के वर्णन के साथ यह चयन करना होता है कि किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण उस आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त होगा। जैसे बच्चे बहुत तरह के होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत प्रखर बुद्धि के होते हैं। तो मंद बुद्धि के बच्चों के लायक उस तरह के मटेरियल्स तैयार करना पड़ता है और कि उसके लायक वो है या नहीं उसकी योग्यता के अनुसार, और कुछ बहुत प्रखर बुद्धि के हैं तो उसके लिए हमें उसी ढंग का में मटेरियल्स तैयार करना पड़ता है और उसके द्वारा मनोवैज्ञानिक जांच करने के एक तरीका होता है और जो इसका लक्ष्य है। दूसरा है कि भविष्यवाणी। किसी भी अध्ययन का दूसरा लक्ष्य है भविष्यवाणी, मतलब बुद्धि योग्यता में अभी क्षमताओं को जांच कर विभिन्न क्षेत्रों में कैसा करेगा यह बच्चा या वह पढ़ाई में कैसा है। तो हम ये बचपन से ही समझ लेते हैं, बहुत बच्चे होते हैं कि बचपन में किसी चीज को जल्दी फॉलो करते हैं तो हम समझ में आ जाता है कि ये बच्चे की बुद्धि जो है बहुत तेज है और हम भविष्यवाणी कर लेते कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। तो कोई बच्चा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा करेगा, वह पढ़ाई में कैसा होगा, वह गणित या विज्ञान में ज्यादा अच्छा करेगा या भाषा साहित्य में। बहुत बच्चे की होती है एक लक्ष्य होता है कि वो लिटरेचर से उसको ज्यादा ही लगाव रहता है और वो जैसे हिंदी लिटरेचर पे ज्यादा मेहनत करता है। बहुत को होता है कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसको गणित से या साइंस से बहुत ज्यादा ये रहता है, वो उसमें ज्यादा अच्छा करता है। तो इस तरह की किस तरह की शिक्षा व्यवसाय प्रशिक्षण बच्चे के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा, इन सारी बातों के संबंध में भविष्यवाणी करना अध्ययनकर्ता का प्रमुख लक्ष्य होता है। थर्ड है व्याख्या। अध्ययनकर्ता का एक प्रमुख लक्ष्य होता है किसी के व्यवहारों के कारणों का पता लग, इसके आधार पर इस बात की व्याख्या करना है कि कोई व्यक्ति व्यवहार क्यों कर। तो व्यवहार जैसे मान लीजिए जैसे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हम किताब लाते हैं और किताब को हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसको रटते हैं और किताबी उस पढ़ाई के अनुसार हम उस कार्य को करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रयोगी कर रहे हैं तो प्रयोग कर रहे तो जो व्यवहार हुआ तो हम क्या है कि इसमें कोई भी व्यक्ति व्यवहार क्यों करता है तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हम लक्ष्य ही नहीं प्राप्त करेंगे तो वो व्यवहार करना ही क्यों है। मान लीजिए हम खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खेल के लिए हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हमारा दौड़ना क्या होगा, व्यवहार हो गया। तो इसलिए हम व्यवहार को व्यवहार करते हैं क्योंकि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना है व्यवहार के माध्यम से। फोर्थ है नियंत्रण। कारणों का पता लगा लेने के बाद अध्ययनकर्ता का अगला उद्देश्य क्या होता है, उससे संबंधित व्यवहार को नियंत्रण करना। मतलब हम किसी भी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि वो किस ओर जा रहा है, उसको उसी दायरे में हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग के माध्यम से हमें समझ में आती है कि वो खेल में ज्यादा जाना चाह रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। तो उसके लक्ष्य को जानने के लिए हम एक कंट्रोल अवस्था में प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, अनुप्रयोग। अनुसंधान का प्रधान लक्ष्य होता है उसके परिणाम को जीवनोपयोगी बनाना। मतलब जो भी है, चाहे व्यवहार हो, चाहे उसकी भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा बहुत आगे कर सकता है, या मान लीजिए वर्णन हम कर रहे कि बच्चा किस मतलब कितने उसकी योग्यता क्या, उसकी क्षमता क्या है, तो उसके अनुसार हम उसको उस ओर ले जाते हैं और ताकि वो उस काम के लिए उपयोग बन सके। तो ये हमारा एक लक्ष्य होता है मनोविज्ञान का।
दोस्तों, अगर शिक्षा और परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हम तक पहुंचाइए। नंबर 3 दबाकर हम आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञों से प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।